जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। तो आप लोग जानते हैं आज की श्लोक संख्या क्या है आप लोगों की ओर से जो मुझे बताई गई है श्लोक संख्या। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों की ओर से आपकी जानकारी के अनुसार क्या है श्लोक। किसी को पता आप लोगों से कितने लोग हैं जो नियमित रूप से आते हैं यहाँ पर हाथ उठाइए। तो जो नियमित रूप से आते हैं वो बता सकते हैं आज का श्लोक संख्या कितना है, है? नहीं यहाँ पर क्रम से होता है या किस तरह से होता है? क्रम से होता है। तो पिछली बार कितना श्लोक हुआ था? 9.29 हुआ था। तो इस बार अगर उस क्रम से होना है तो कौन सा होगा? अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। तो आप लोग बताते क्यों नहीं? कोई बताने रहे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा कितने के पास, कितने लोगों के पास किताब है? अच्छा तो किताब खोली आप लोगों ने? खुली है किताब आप लोगों की? अच्छा मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 अध्याय का नाम है परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 30। मेरे पीछे बोले हैं अपि चेत्सो दुराचारो जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही आवाज शायद आधी भी नहीं है जितने लोग हैं मेरे पीछे बोलिए किताब हो या ना हो आप लोगों को बोलना है भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम् अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। शब्दार्थ बोली अपि भी चेत यदि सुदुराचारः अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है माम मेरी अनन्य भाग बिना विचलित हुए साधु साधु पुरुष एव निश्चय ही सह वह मंतव्य मानने योग्य सम्यक पूर्णतया व्यवस्थितः संकल्प वाला ही निश्चय ही सह वह। अनुवाद मेरे पीछे बोली, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो इस श्लोक को समझेंगे, इस श्लोक बहुत सरल है और इस श्लोक में बहुत गहराई है। इस श्लोक में बहुत से अर्थ हैं, बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं और प्रभुपाद भी इस श्लोक के काफ़ी गहराई में जाते हैं। तो सरलता से हम इस तरह समझ सकते हैं, अपि चेत सो दुराचारो, चेत का मतलब है यदि, यदि कोई व्यक्ति सुदुराचार हो, दुराचारी, और फिर सु लगा दिया मतलब और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सु, अगर सु लगा देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा, है ना। तो कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा दुराचारी हो, है ना, और भजते माम अनन्य भाग, और मेरा भजन करे अनन्य भाव से, साधु रेव समन्तव्या, तो वो साधु ही माना जाएगा, सम्यक व्यवस्थित हो ही सहा, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। क्या दृढ़ निश्चय किया है? कि कृष्ण का मुझे भजन करना है और अन्य किसी का नहीं करना। मेरा भजन करता है किस तरह से? अनन्य भाव, अन्य किसी का भजन नहीं करता, केवल कृष्ण का भजन करता है, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि वो साधु ही माना जाएगा, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। अब देखिए प्रभुपाद बड़ी गहराई में जाते हैं। सुदुराचार, इसका एक अर्थ है ये भी है कि दुराचारी तो है, लेकिन सु शब्द लगाने से वो अच्छे भाव में भी आ जाता है। आप समझ रहे हैं? दुराचारी दु अगर लगाते हैं तो बुरा भाव होता है, और सु लगा देते हैं तो अच्छे भाव में आ जाता है। तो सु दुराचारी का मतलब है कि वो दुराचारी है, लेकिन सु का मतलब है कि अच्छे भाव में भी, उसका भाव हो सकता है अच्छा हो लेकिन समाज की दृष्टि में वो दुराचारी हो, तो सुदुराचार है। तो इसमें बड़ी गहराई है। तो यहाँ प्रभुपाद जो है एक ये भी अर्थ ले रहे हैं। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त है, जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि एक तो हमारा जीवन है, समाज के बंधन हैं, अपने परिवार के बंधन हैं, और उनमें हम जो है कुछ कार्य करते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम बंधे हैं उन कार्यों से, हम बंधे हैं। वो सामाजिक बंधन है और पारिवारिक बंधन है, तो वो बद्ध कार्य हैं, बद्ध कर्म हैं। और दूसरे कर्म क्या है? दिव्य हैं, स्वाभाविक हैं। दिव्य स्वाभाविक भक्तों के लिए क्या होते हैं? दिव्य स्वाभाविक कृष्ण की भक्ति के कार्य हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं, तो वो जो है। और प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हाँ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों समांतर चलते हैं, दोनों कार्य समांतर चलते हैं, यानी एक दूसरे से विरोध नहीं होता, है ना। दोनों कार्य समांतर चलते हैं, तो समांतर चलते हैं तो एक दूसरे से विरोध नहीं होता है और चल रहा है उसका काम। समाज के जो बंधन हैं और परिवार के बंधन हैं, शरीर का भी बंधन है, तो उनके लिए भी उसको कार्य करना होता है, और कृष्ण की भक्ति के जो कार्य हैं वो अपना करता है, तो वो दोनों साथ साथ चलते हैं, समांतर। उसको कहते हैं समांतर, समांतर चलते हैं, समांतर, समझ रहे हैं। जैसे रेल की दो पटरियां हैं, समांतर चलती हैं, है ना, तो वे कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये दोनों कार्य समांतर चलते हैं भक्ति के लिए, दोनों कार्य समांतर चलते हैं, एक दूसरे से जो है कहीं कहीं मतलब विरोध नहीं होता, समांतर चलते हैं आगे। किंतु पुनः कभी कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, क्या बड़ा विरोध हो जाता है कि अगर मैं भक्ति के कार्य करूंगा तो समाज के और परिवार के से विरोध हो जाएगा, और अगर समाज और परिवार के अनुसार अगर मैं कार्य करूंगा तो कृष्ण भक्ति के विरोध हो जाएगा, तो कृष्ण की भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो कभी कभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो अब ये क्या हो गई स्थिति? दुविधा, ये दुविधा की स्थिति हो गई, यह इसको कहते हैं धर्म संकट। तो यहां प्रभुपाद देखते हैं, जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है, सतर्क रहता है कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे ये अनुकूल स्थिति भंग हो, मतलब कृष्ण की भक्ति में भी बाधा ना पड़े और सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में भी कोई बाधा ना हो, दोनों कार्य। वो जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। अब समाज के जो है कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे कि अगर आप कृष्ण भक्ति के कार्य करेंगे तो वो उसमें बाधक होगा। जैसे आप अपने घर में खूब जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हैं, तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके कार्य में बाधा आती है, वो कहते हैं आप इतना शोर क्यों करते हैं। गिरडे क्रास में हमारा जो मंदिर था तो उसमें जब हम लोग कीर्तन करते थे तो पड़ोसियों को जो है बाधा होती थी, और उन लोगों ने जो है कोर्ट केस किया हुआ था, तो हमारे मंदिर में फिर जो है कुछ इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था कि मंदिर के अंदर जो है कीर्तन होना चाहिए लेकिन वो आवाज़ बाहर ना निकले, पड़ोसियों को कोई आपत्ति ना हो, इस तरह से ये बातें थी। और चैतन्य महाप्रभु भी श्रीवास ठाकुर के घर में रात भर कीर्तन करते थे और खूब ऊंचे स्वर में कीर्तन करते थे, हैं, तो जो निंदक लोग थे वो बहुत निंदा करते थे कि हमारी नींद खराब होती है, ये लोग जो है कीर्तन जोर जोर से करते हैं, हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। अब वो राजनीतिक जैसे कि प्रशासन के जो नियम हैं उनके अनुसार भी हो सकता है कि वो कार्य सही ना हो। कभी कभी भक्त लोग सड़क में नगर कीर्तन करते हैं, है? तो जो ट्रैफिक के नियम हैं उनके अनुसार वह कुछ बाधा पड़ती है, है? तो इस तरह के बहुत से कार्य होते हैं जिनसे कि बाधा पड़ती है, और प्रशासन के कार्य में बाधा पड़ती है। जैसे भक्त लोग हैं, मान लीजिए कि गौ पालन कर रहे हैं, तो दिल्ली शहर में गाय को पालना कानूनी अपराध है, कानूनी जुर्म है। तो भक्त तो जो है कृष्ण की भक्ति के लिए गौ की सेवा करता है, गौ को पालता है, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से क्या है, निंदनीय है। तो इस तरह के बहुत से कार्य होते हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वो अयोग्य नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार के कार्यों से उसका मतलब पतन माना जाता है, है? किस दृष्टि से? किस दृष्टि से? राजनीति की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से, है? ये क्या है? दुराचारी। उसको कहेंगे कि भाई ये जो है अपराध कर रहे हैं या कानूनी जुर्म कर रहे हैं, इस तरह की बातें आती हैं। तो ये जो दुराचार है ये उनकी नज़रों में है, जो कि तथाकथित समाज है या तथाकथित प्रशासन है उनकी नज़र में। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जो अर्थ निकाल रहे हैं वो किस प्रकार का अर्थ निकाल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आप हंसी नहीं, कि वो जो है समाज की दृष्टि में निंदनीय हो गया है या राजनीति की दृष्टि में निंदनीय हो गया है, है ना? तो किसी को हंसना नहीं चाहिए। भगवान हंसना मना कर रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं? साधु रेव समन्तव्य, वो साधु ही माना जाए। तो प्रभुपाद जो है भगवान का इस भगवान किस भाव को पकड़ रहे हैं, है? कि भगवान ने जब कहा कि वो साधु ही माना जाएगा, साधु रेव समन्तव्य, है कि वो साधु ही है, तो भगवान जो है पसंद नहीं करते हैं कि आप उसके ऐसे सामाजिक या राजनीतिक पतन को देख करके हंसे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, यह भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है, यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। मंतव्य, जब भगवान ने कहा साधु रे कि वो साधु ही है और मंतव्य हमने मानना है, हा? तो भगवान ने जो है आदेश दिया कि मानो कि वो साधु है, है ना? तो इस तरह से अगर आप फिर भी हंसते हैं तो आप क्या है? भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं। आगे, भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वो अविचल और अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। क्यों? भक्ति में तो लगा हुआ है, भक्ति में तो पूरी तरह से लगा हुआ है, और समाज की दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से अगर उसका ये जो पतन है, हालांकि नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ कारण से अगर वो हो गया और वो निंदा का पात्र बन गया, लेकिन आप अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको नहीं हंसना है। अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो आप मत हंसना। तो यहाँ पर भगवान जो है चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप कृष्ण के निकट आना चाहते हैं तो दूसरों की देखा देखी आप मत हंसिए, हंसना मना है। दूसरे लोग अगर हंसे हैं, है ना, तो आपको नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि समाज का दबाव है, राजनीति का दबाव है कि गलत काम है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कोई गलत काम नहीं, वो तो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है और कृष्ण की भक्ति के कारण वो जो है राजनीति की दृष्टि से समाज की दृष्टि से अगर निंदा का पात्र बन गया है तो ये जो है कोई हंसने की बात नहीं है, है? तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति की एकमात्र योग्यता यह है कि वो अभिचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती चा हरा वनन्न चेता विस्मरिनोपि विराजते मनुष्यः नहीं सस करुषत छवि कदाचित तिमिर परा भवताम उपैति चंद्रः। कहने का अर्थ ये है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता है पाया जाए तो उन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। शशांक चंद्रमा को क्या बोलते हैं? शशांक। अंक का मतलब है गोद और शश का मतलब है खरगोश। तो शशांक का मतलब क्या हुआ? जिसकी गोद में एक खरगोश है ना? तो चंद्रमा का जो कलंक है हाँ, तो वो खरगोश के आकार का लगता है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने अपनी गोद में एक खरगोश को रखा हुआ है, तो इसलिए शशांक कहा जाता है, शशांक है ना। तो उसी को कहा गया चंद्रमा में अगर वो कलंक है भी तो भी उसकी चांदनी में कोई बाधा नहीं आती है, चंद्रमा के प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती, फिर भी चंद्रमा रात्रि का अंधकार दूर करता है। चंद्रमा में कलंक होने के बावजूद भी चंद्रमा रात्रि का अंधकार दूर करता है, और जो दूसरे तारे हैं उनमें कोई कलंक नहीं है, अभी हजारों लाखों तारे मिलकर के भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं कर पाते। तो कौन श्रेष्ठ है? चंद्रमा में कलंक है ना, लेकिन तो भी रात्रि का अंधकार दूर करता है, और जितने तारे हैं उनमें कोई कलंक नहीं है, वे सब मिलकर के भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं करते, तो कौन श्रेष्ठ है? चंद्रमा श्रेष्ठ है ना। तो इसी प्रकार से भक्त, भक्त में जो है समाज की दृष्टि से मान लो वो कलंकित हो जाए, राजनीतिक दृष्टि से कलंकित हो जाए, लेकिन तो भी वो आदर का पात्र है, तभी वो प्रशंसा का पात्र है ना। और दूसरे व्यक्ति हैं वो समाज की दृष्टि में बहुत अच्छे हैं, सम्मानित हैं, और राजनीतिक दृष्टि में बहुत अच्छे हैं, सम्मानित हैं, लेकिन तो भी उनमें कोई गुण नहीं है। जैसे तारे हैं है ना, उनमें कोई धब्बा नहीं है, लेकिन तो भी उनसे कुछ फायदा नहीं है, रात्रि का अंधकार दूर नहीं कर सकते हैं। तो यहां प्रभुपाल लिखते हैं इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। आगे किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। अब देखिए प्रभुपाद एक दूसरे पक्ष में आ गए, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति सोचे कि देखो इतना अच्छा तो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है ना, तो फिर मेरे लिए मतलब पूरा छूट है, मुझे तो फिर पूरी छूट है, जब मैं जितना गलत काम चाहूँ उतना करूँ, मेरे लिए तो पूरी छूट है क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वो भक्त बना रह सकता है। देखिए कितना अच्छा प्रभुपाद ने दूसरी दिशा से भी हमको जो है रोका है कि हम दूसरी दिशा में ना जाएं कि मनवाने जो है कार्य करें। यदि वो भक्ति के द्वारा अपने चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जो है दोनों पक्षों को जो है मतलब लिया, प्रभुपाद ने दोनों पक्षों को लिया है। एक पक्ष पे भी है कि अगर इस तरह से कुछ निंदा की बात होती है तो हमें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ इसका जो है कोई व्यक्ति अगर दुरुपयोग करे तो फिर ये निंदा की बात है, तो फिर ये निंदा की बात है ना। तो प्रभुपाद भी बहुत निंदा करते थे, भक्ति सिद्धांत भी बहुत निंदा करते थे, भक्ति मोहन ठाकुर भी बहुत निंदा करते थे। किन की निंदा करते थे? जो अप संप्रदाय हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा का जो है जो दावा करते हैं, जो लोग दावा करते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अपने को बताते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, तो उन सबको भक्तों ने ठाकुर ने पर्दाफाश किया। भक्तों ठाकुर ने ऐसे 13 अप संप्रदायों की गणना की है, जो कि अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। जैसे प्राकृत सहजिया, तो प्राकृत सहजिया की निंदा प्रभुपाद ने जगह जगह की, क्योंकि उनका यही कहना है कि हम अगर भक्ति करते हैं तो फिर हमारा जो रास्ता है बिल्कुल आसान है, भक्ति में जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान है, हमें किसी प्रकार के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, और वे चारों नियमों को तोड़ते हैं। चारों नियम नहीं तोड़ते तो भी काफ़ी नियम तोड़ते हैं, चार में से काफ़ी नियम तोड़ते हैं, जैसे कि व्यभिचार नहीं तो वे व्यभिचार करते हैं, नशा नहीं तो वे नशा करते हैं, और अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों ने वैष्णव समाज को बहुत बदनाम किया, यहाँ तक कि समाज में वैष्णव का नाम ही इतना बदनाम हो गया कि वैष्णव के नाम पर ही लोग नफरत करने लगे, क्योंकि वे अपने को वैष्णव बताते हैं, और ऐसे लोगों की बहुत संख्या है। तो वैष्णव के नाम पर ही लोग नफरत करते थे कि वैष्णव इतने गिरे हुए हैं, वैष्णव लोग इतने दूषित होते हैं। तो वे जो है व्यभिचार करते हैं, और जो है समाज में उनका जो व्यभिचार है बिल्कुल खुला रहता है, खुला व्यभिचार करते हैं, और नशा करते हैं तो बिल्कुल खुला नशा करते हैं। तो प्राकृत सहजिया हैं, और जैसे कर्ता भाजा और दरवेश, सखी फेकी, ऐसे जो है कई अप संप्रदाय हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको जो है पर्दाफाश किया कि ये वैष्णव नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। तो ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर का जो कार्य है ये बहुत क्रांतिकारी है, और ये बहुत आवश्यक है कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं तो हम समझें कि चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, अगर हमें बनना है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बहुत सावधानी से हमें समझना है। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो। अब इसको आप समझिए, मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, कोई व्यक्ति समाज में अगर बहुत बदनाम है, दुराचारी है, और भजते माम अनन्य भाग, और वो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। अब समझिए मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, समाज में वो बहुत बदनाम है, बहुत दुराचारी है, और मेरा अनन्य भाव से भजन करना शुरू कर दे, तो वो क्या कर रहा है, दुराचार में भजन कर रहा है, तो प्रशंसा की बात है। आप समझ रहे, वो द्रोणाचार्य में कृष्ण का भजन कर रहा है तो प्रशंसा की बात है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के भजन में द्रोणाचार्य करे वो निंदा की बात है। आप समझ रहे कि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं, दिखा रहा हूं मैं कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं और फिर दुराचार करूं तो निंदा की बात है। तो भगवान ये बात नहीं बोल रहे हैं कि जो कृष्ण का अनन्य भजन करता है वो दुराचार करे, ये नहीं कहा भगवान ने। तो भजन में दुराचार नहीं भगवान बता रहे हैं, बल्कि भगवान क्या बता रहे हैं, दुराचार में भजन। और दुराचार में भजन भी कैसा, अनन्य भजन, तो वो साधु। और उसके लिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, उसका शुद्धिकरण होता है, उसका शुद्धिकरण बहुत तेजी से होता है। आप समझ रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति भजन में दुराचार करता है तो ये अपराध होता है, जैसे सातवां नाम अपराध क्या है, नाम के बल पर पाप करना, तो ये अपराध हो गया। नाम के बल पर पाप करना ये अपराध हो गया। तो भजन के बल पर दुराचार करना क्या है, निंदा की बात है। तो भगवान वो बात नहीं बता रहे हैं आज के श्लोक में कि भजन के बल पर दुराचार करना है, कि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं तो जो चाहूं गलत काम कर सकता हूं, ये बात नहीं है। लेकिन वे पहले से ही बहुत दुराचारी है और वो कृष्ण का भजन करे तो वो साधु। जैसे अजामिल था, बहुत पतित था, दुराचारी था, लेकिन अपने पुत्र को जो है नारायण नाम से पुकारता था, तो अपने पुत्र में उसकी आसक्ति हो गई थी, अनन्य आसक्ति हो गई थी। अब पुत्र में आसक्ति भी तो भौतिक आसक्ति है, उसका पुत्र भी तो कोई भगवान तो है नहीं, जैसे कि माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही है, कृष्ण तो भगवान है, तो कृष्ण में पुत्र के रूप में आसक्ति भी जो है उनकी दिव्य है। लेकिन अजामिल अपने पुत्र में आसक्त था, तो उसका पुत्र तो भगवान नहीं था, तो वो आसक्ति भी तो भौतिक है, लेकिन चूंकि नाम रखा था उसने नारायण, तो उस आसक्ति के बीच में नारायण नाम चूंकि आ गया, तो इसलिए वो आसक्ति दिव्य हो गई और वो अनन्य आसक्ति, मतलब अन्य और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अपने पुत्र की सेवा उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। और चूंकि पुत्र में आसक्ति है तो पुत्र के नाम में आसक्ति है, और वो पुत्र का जो नाम है नारायण, ये किसका नाम है, भगवान का नाम है ना। तो उसको कह सकते हैं कि दुराचारी है, लेकिन वो मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है, मतलब नाम का तो भजन कर रहा है, वो नारायण अपने पुत्र को नारायण हमेशा बुलाता है, तो जब वो खाता है तो अपने पुत्र को बुलाता है नारायण आ खा ले, बिना पुत्र को खिलाए वो खाना नहीं चाहता है, जब पानी पीता है तो नारायण आ पानी पी ले, तो पुत्र को जो है बिना पिलाए वो पानी भी नहीं पीना चाहता है, तो हमेशा अपने पुत्र को नारायण पर करके बुलाता है, तो हर प्रकार के भोगों में वो जो है अपने पुत्र को याद करता है और पुत्र को जो है वो सेवा देना चाहता है। तो भजते माम अनन्य भाव, तो एक प्रकार से उसका जो है नाम का भजन हो रहा था, नारायण नाम का भजन हो रहा था, है ना। तो इसलिए वो साधु, साधु एव समन्तम, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। और सचमुच हुआ क्या कि जब यमदूत आए हैं तो उसने किसको पुकारा, नारायण, अपने पुत्र को ही पुकारा नारायण, पुत्र में उसकी इतनी आसक्ति थी कि अपने पुत्र को बुलाया नारायण, और तुरंत चार विष्णुदूत आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, डरो नहीं डरो नहीं, है ना। तो ये मतलब एक उदाहरण है आज के श्लोक के अनुसार कि भजते माम अनन्य भाव। हालांकि वो शुद्ध नाम नहीं था उसका, उसको नामाभास कहते हैं। नामाभास से भी जो है वो बहुत बड़े संकट से छूट गया। तो यहां पर जो मुख्य बात है वो ये है कि कोई दुराचार से भी बड़ा दुराचारी हो, लेकिन अगर कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण के भजन में अगर लग जाता है, तो उसको साधु मानना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात भी है कि कृष्ण के भजन में दुराचार नहीं होना चाहिए। जैसे दुराचार में कृष्ण का भजन ये प्रशंसा की बात है, उसी प्रकार से भजन में दुराचार निंदा की बात है। तो निंदा, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के जो भक्त हैं, आप लोग भी जो जुड़े हुए हैं, है? आप लोगों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि कोई कार्य ऐसा ना हो कि जिसको देख करके लोगों के अंदर कृष्ण के प्रति ही श्रद्धा खत्म हो जाएगी, है? कि ये जो है इस कौन से जुड़े हुए हैं, कृष्ण के भक्ति से जुड़े हुए हैं, है? और ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आपके कारण उनकी कृष्ण के प्रति भी जो है श्रद्धा खत्म हो जाए, तो ऐसा कार्य ना करिए, है ना। तो इसमें बहुत शिक्षा है और इसमें बहुत गहराई है। तो आप लोगों की ओर से अब कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आज का विषय बहुत रोचक है। मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न।
प्रभु जी, मान लीजिए अगर कोई भक्त है, कोई भी है, वो कोई चीज करता है शुरू से अब तक, उसे छोड़ना चाहता है, तो अगर उसकी आदत में वो अभी वो नहीं छोड़ पा रहा उस चीज को, तो अगर उस टाइम पे वो भक्ति भी कर रहा है, वो चीज छोड़ना भी चाहता पर मुश्किल से वो छोड़ नहीं पा रहा उसकी आदत में, तो उस स्टेज में वो क्या करे, उस स्टेज के लिए क्या होगा?
तो इसी अवस्था के लिए तो भगवान बता रहे हैं कि वो जो है दुराचारी है, लेकिन वो कृष्ण का अनन्य भजन कर रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो यह अनन्य भजन, अगर आप कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं तो आप बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। लेकिन यहाँ पर अनन्य भजन है, तीव्र भजन है, अगर आप तीव्र भजन करते हैं तो आप बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाते हैं। यहाँ पर भगवान बताते भी हैं, अगले श्लोक में बताते भी हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, तो उसको जो है शाश्वत शांति प्राप्त होती है, बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो ये भी जो है एक प्रयोग है कि अगर आप अनन्य भक्ति करते हैं तो आप जो है, हाँ, आपका ये जो प्रयोग है ये परिणाम, प्रयोग का जो है परिणाम मिलेगा। आप ये प्रयोग आप करें और इसका परिणाम देखें, तो एक ये प्रयोग भी है। लेकिन अनन्य भाग का मतलब यही है, जैसे अजामिल था तो अजामिल के भी पाप कर्म चलते जा रहे थे, अपने पुत्र में भी जो है उसकी आसक्ति थी, उसके पाप कर्म भी चलते जा रहे थे। लेकिन जब बहुत बड़े संकट में वो पड़ा, मृत्यु के संकट में पड़ा, है? तो उसकी अनन्य, उसका अनन्य भजन, है? की परीक्षा हुई, तो उसने क्या बोला उस समय, नारायण। तो उसी प्रकार से आपके अनन्य भजन की परीक्षा होती है, जब आप संकट में पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं उस समय, आप क्या बोलते हैं, किसको याद करते हैं, हरे कृष्णा, है? तो आप हरे कृष्णा बोलते हैं या अरे बाप रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये जो है आपको ही देखना है, आपको अपनी परीक्षा करनी है कि आपका भजन कितना अनन्य है, आप अन्य का भजन कर रहे हैं या कृष्ण के अलावा किसी अन्य का भजन नहीं कर रहे हैं। तो ये परीक्षा आपको खुद ही करनी है अपनी, भजते माम अनन्य भाग। हजामिल बहुत पापी था, लेकिन उसका भजन अनन्य था। वो पुत्र का ही भजन करता था, लेकिन चूंकि उसमें नारायण नाम भी शामिल हो गया, इसलिए वो कृष्ण का भजन बन गया। तो अपने पुत्र के भजन में भी जो है वो नाम का जो उच्चारण कर रहा था वो भगवान का था, और वो अनन्य भजन हो गया उसका। तो यमदूत आए है ना, तो वो जो है अरे दैया रे, अरे बाप रे, ये सब नहीं बोला। वो क्या बोला? नारायण। वो बोला नारायण। और आप जब ट्रक के सामने आते हैं, ट्रक सामने आ जाए आपके, तो समय आप क्या बोलते हैं? बाप रे, अरे बाप रे। तो वो नहीं है, हरे कृष्ण का जाप कर रहे, 16 माला जप कर रहे हैं। लेकिन जिस समय सामने ट्रक आ जाए तो बोलते अरे बाप रे, अनन्य भजन नहीं है। अनन्य भजन की जो परीक्षा है वो आपको खुद ही करनी है, है ना? और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। प्रभुपाद ने एक बात ये बताई है कि बद्ध जीवन के कर्म हैं, दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो बद्ध कर्म हैं, दूसरे स्वाभाविक कर्म हैं। तो इनको कैसे समझें, कौन बताएगा? मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं, तो बद्ध कर्म हैं, दूसरे स्वाभाविक कर्म हैं। तो कौन बताएगा? तो वो बात बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक तो बद्ध कर्म है, दूसरे स्वाभाविक कर्म है। क्या मतलब? बद्ध कर्म है? समाज से जुड़े हैं। हाँ हाँ। और स्वाभाविक? कृष्ण, हाँ हाँ, कृष्ण भक्ति से संबंधित। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो है अक्सर ये समांतर चलते हैं, भक्त के जीवन में ये दोनों कर्म समांतर चलते हैं। इसका क्या मतलब है समांतर चलते हैं? इसका क्या मतलब है? साथ साथ चलते हैं, मतलब एक दूसरे का में बाधा नहीं डालते हैं। रेलगाड़ी है तो दो पटरियां जो है समांतर होती हैं, तो कभी भी एक दूसरे को बाधा नहीं डालते हैं, समांतर चलते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है, बाधा डालते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो उसमें बाधा पड़ेगी, उसको करेंगे तो इसमें बाधा पड़ेगी, है ना? जैसे उदाहरण, उदाहरण के लिए कोई उदाहरण है? जोर जोर से कीर्तन करते हैं भक्त लोग, जोर जोर से कीर्तन, कभी सड़क में कीर्तन करते हैं, तो उसमें भी जो है हाँ बाधा पड़ती है, या ट्रैफिक रूल में जो है बाधा पड़ती है। अपने घर में कीर्तन करते हैं तो पड़ोसियों को बाधा होती है। तो इस तरह से जो है कभी कभी वो हो जाता है। और अगर समाज के अनुसार चलें, समाज के अनुसार चलें, तो भाई पार्टी में जाना है, क्या पार्टी में जाना है, तो वहां पर क्या होगा? ड्रिंक और मीट, मांस और शराब। अगर आप जो है उनकी दृष्टि में आप सही बनना चाहते हैं तो भक्ति से आप भक्ति में बाधा है। तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति आ जाती है, तो उसको भी जो है मतलब समाज की दृष्टि से फिर वो दुराचारी माना जाता है। आप समाज की दृष्टि में दुराचारी हैं, पतित हैं। तो ये भी स्थिति है। हैं?
इसको दूर कैसे किया जाए? जो आज मांस भक्षण इत्यादि करते हैं, या पता है इसको दूर कैसे किया जाए?
इसको दूर कैसे किया जाए ना, या इनसे हम कैसे दूर हों?
नहीं, जो आदमी मीट मछली इत्यादि का सेवन करते हैं तो उसका निवारण कैसे हो जाए, वो कैसे सुधरे?
देखिए यहाँ पर तो बात यह है कि भक्ति में हमें पहले लगना है। हम किसी को उपदेश अगर देते हैं तो हम ये उपदेश नहीं देते कि मांस बंद करो, शराब बंद करो, व्यभिचार बंद करो, हम ये उपदेश नहीं देते हैं। प्रभुपाद जब गए थे विदेशों में तो अगर उन्होंने ये कहा होता कि तुम लोग जो है मांस शराब व्यभिचार और जुआ ये सब बंद करो, हाँ, तो प्रभुपाद तो वो लोग क्या कहते तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप जाइए यहाँ से, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बंद कराया, प्रभुपाद ने हरे कृष्ण का कीर्तन कराया। तो आज का वही तो मुख्य बात है, वो बात नहीं है, मुख्य बात यही है। दुराचार में भी कोई अनन्य भजन करता है तो शुद्ध हो जाता है, फिर कोई समस्या नहीं है कि कैसे दूर करें। अब ये प्रश्न ही नहीं है, ये तो भगवान बताते हैं कि छिप्रम बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है, फिर आपकी क्या चिंता है कि उनको कैसे दूर करें, आपकी क्या चिंता है। प्रभुपाद ने कुछ नहीं मना किया, प्रभुपाद ने केवल उनको जोड़ा, कुछ भी नहीं है छोड़ने के लिए कहा, केवल हरे कृष्ण को जोड़ने के लिए कहा कि हरे कृष्ण का कीर्तन करो, उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। तो फिर ये कहाँ की समस्या हो गई कि भाई इनको कैसे छुड़ाएं, ये कौन सी समस्या है? देखिए ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। आप ये संकीर्तन आंदोलन में अगर आप फैलाते हैं, संकीर्तन आंदोलन फैलाते हैं तो सब प्रकार के दोष दूर होंगे। आप एक दोष की बात कर रहे हैं, आप एक दोष की बात करते हैं, सभी प्रकार के दोष दूर होंगे केवल संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। इसमें केवल एक दोष नहीं है, सभी प्रकार के दोष दूर होंगे। अगर प्रभुपाद की पुस्तकों का अगर आप वितरण करते हैं है? और उनको पता चलेगा कि ये कर्म के अनुसार हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। आज की शिक्षा ने लोगों को बिगाड़ा हुआ है, आज की शिक्षा है? कैसी है कि अगला जीवन ही नहीं है। अब अगला जीवन ही नहीं है तो आप जो कुछ भी चाहो वो करो, अगला जीवन है ही नहीं तो आपके जो है कुछ कर्मों का कोई विचार ही नहीं है, आप चाहे जैसे कर्म करें। नहीं, जब अगला जीवन आपको पता चलता है आपका अगला जीवन है और आपके कर्मों के अनुसार मिलने वाला है तो आप खुद ही विचार करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसके अनुसार मुझे कैसा जीवन मिलेगा। तो ये जो ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है ना, ये बहुत शक्तिशाली है, ये संकीर्तन आंदोलन बहुत शक्तिशाली है। इससे हाँ एक प्रकार का दोष नहीं दूर होगा, आप कहें गोहत्या, फिर आप दूसरी बात कहेंगे भाई नशा है, तीसरी बात कहेंगे व्यभिचार है, हैं कितने 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 प्रकार के दोष हैं, हजारों हजारों दोष। कलेर दोष निधे राजन, दोषों का समुद्र है कलयुग, दोषों का समुद्र है। तो आप एक दोष दूर को दूर करना चाहते हैं तो दोषों का समुद्र है। अस्ति है को महान गुण, लेकिन बहुत महान गुण कलयुग का यही है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम ब्रजे। तो कृष्ण के कीर्तन मात्र से ही सब लोग जो है आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इतनी शक्ति है इस संकीर्तन आंदोलन में, इसको समझिए। और आज का श्लोक यही है, तो हम दुराचार बंद नहीं कर रहे हैं, हम केवल भक्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं और भक्ति में लोगों को जोड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो है हिप्पियों को ही हरे कृष्ण कीर्तन कराया, और हिप्पी लोग चारों नियमों को तोड़ते थे, व्यभिचार मांसाहार जुआ नशा सब कुछ करते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने क्या किया, कीर्तन ही कराया उनसे। और इससे क्या हुआ, उन्होंने मतलब पूछा, स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या कुछ नियम है, और प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, छोड़ दिया उन्होंने, तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने खुद ही पूछा कि आप कैसे से बनने के लिए क्या नियम है, और उन्होंने छोड़ दिया। अगर प्रभुपाद उनसे छुड़ाते कि भाई पहले छोड़ो तब हम आपको हरे कृष्ण का कीर्तन बताएंगे सिखाएंगे, तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहते हैं, कहेंगे गुड बाय, नमस्कार। दोबारा वो आएंगे ही नहीं। तो प्रभुपाद ने किसी को भी नहीं मना किया, प्रभुपाद ने किसी को छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा कि पाप कर्म छोड़ो। प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्ण का जोड़ो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये भक्ति बहुत शक्तिशाली है। नाम के बल पर पाप करना वो अलग बात है, तो ये हम इसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। लेकिन शुरू शुरू में हम किसी को मना नहीं करते। हम कहते हो चलो भाई हरे कृष्ण का जाप तो करो, माला जप करो। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, सबसे पहले अगर आप उससे मिलते हैं तो हरे कृष्णा ही बोलोगे, हरे कृष्णा बोलो भाई। हम ये नहीं कहते गो हत्या है, व्यभिचार है, वेश्यावृत्ति है, ये है वो है, हम ये चर्चा नहीं करते। हम कहते हरे कृष्णा बोलो, हर व्यक्ति को जोड़ते हैं हरे कृष्णा। भक्ति में जब आप उन्नति करते हैं तो अपने आप शक्तिशाली बन जाते हैं। अभी आप जो है कमजोर हैं माया के सामने, और आप जो है गिर जाते हैं बार बार। आप अपनी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, कोई आदत अगर आपकी गलत है उसको नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन भक्ति में अगर आप लगे रहते हैं तो भक्ति जैसे जैसे आपकी शक्तिशाली होती है तो वैसे वैसे आपकी भी शक्ति बढ़ती जाती है, और वो आपके जो अनर्थ हैं वो दूर होते हैं। भक्ति में जो है प्रारंभ में जो है श्रद्धा से प्रारंभ होती है, भक्ति श्रद्धा से प्रारंभ होती है। श्रद्धा से फिर साधु संघ में आते हैं, साधु संघ से भजन क्रिया में आते हैं। भजन क्रिया जहाँ मतलब अनन्य भाग, भजते माम अनन्य भाग। तो भजन क्रिया से फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, आपके अनर्थ दूर होंगे, और जितने अनर्थ पहले थे उतने अनर्थ अब नहीं है, कुछ कम हुए। तो जैसे जैसे आपका भजन बढ़ता जाता है या तीव्र होता जाता है, वैसे वैसे आपके अनर्थ घटते जाते हैं। ठीक है ना। जो लोग किसी की भक्ति कर रहे हैं, किसी का भजन कर रहे हैं, उनमें कुछ अनर्थ होते भी हैं तो भी निंदा की बात नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने इस श्लोक उद्धृत किया है नरसिंह पुराण का कि चंद्रमा में कलंक होने के बावजूद भी वो क्या करता है, रात्रि का अंधकार दूर करता है। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिनमें कुछ गलत आदतें होती भी हैं, लेकिन तो भी अगर वो भक्ति में लगे हुए हैं तो वे जो है समाज के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। कि भक्ति में किसी प्रकार से वो लगे हैं और भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं तो प्रशंसा की बात है। और जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा हुआ है और वैसे समाज की दृष्टि में बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी वो प्रशंसा का पात्र नहीं है। जैसे कि तारे हैं, तारों में कोई कलंक नहीं होता, लेकिन तो भी रात्रि का अंधकार भी दूर नहीं कर पाते, और चंद्रमा में बहुत बड़ा कलंक है लेकिन तो भी रात्रि का अंधकार दूर करता है, है ना। तो जो आज का श्लोक है ये बहुत क्रांतिकारी है और भगवान की ओर से एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन हमें गहराई से समझना होगा और इस बात का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना है कि ठीक है हम भक्त बन गए तो हमको जो है अब लाइसेंस मिल गया है, कोई भी गलत काम करने का लाइसेंस मिल गया, ये नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।